नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर जामनगर पहुंचे। श्री मोदी आज श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह फरवरी में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 9.1% से बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हुआ। देश भर में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू और दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर कल शाम जामनगर पहुंचे। वे अगले 2 दिनों के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
प्रधानमंत्री आज जामनगर में वन तारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करेंगे, जिसके बाद वे सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री सासण गिर में पहुंचेंगे और वहां पे सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी की सवारी करेंगे और सासण गिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बोर्ड वन्य जीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिन की यात्रा पर केरल जाएंगे। इस दौरान वे तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित 4थे पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान माला में व्याख्यान देंगे। उपराष्ट्रपति आज तेलंगाना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। संगारेड्डी के जिलाधिकारी वी क्रांति ने आईआईटी हैदराबाद के अधिकारियों, पुलिस और कर्मचारियों के साथ उपराष्ट्रपति की यात्रा के लिए व्यवस्था की समीक्षा की। इस बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और शमशाबाद क्षेत्र पर ड्रोन, पैराग्लाइडर और माइक्रो लाइट विमान सहित हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी विधायकों से राजनीतिक पदों के प्रलोभन से ऊपर उठकर निर्वाचन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने और नागरिकों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पद क्षणिक होते हैं और लोगों का विश्वास स्थायी होता है। श्री नड्डा कल कटरा में 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधायकों को सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अच्छे श्रोता बनने और नियमित रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से मुलाकात करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की।
जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाए। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी।
देश का कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह इस वर्ष फरवरी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया है। फरवरी में लगातार 12वें महीने 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है। एक रिपोर्ट।
आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय वस्तु और सेवा कर से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में हिमस्खलन प्रभावित सीमा सड़क संगठन के शिविर से 51 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि बर्फ में फंसे बाकी मजदूरों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान जारी है।
विभिन्न राहत एजेंसियों जिसमें सेना, ITBP, BRO, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और कई एजेंसियों के सहयोग से हम लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कुल 55 लोग इसमें फंसे हुए थे, जिसमें से अब तक हम लोग 51 को निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 की डेथ भी हुई है और 4 लोग अभी भी खोज रहे हैं। हम लोग 6 से 7 फीट बर्फ वहाँ है, इसके बावजूद वहाँ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल की भारी बर्फबारी के मद्देनजर पर्यटकों से अगले 3 दिन तक औली और हर्षिल न जाने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पूरे देश में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। कल रात बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में विशेष नमाज तरावी अदा करने पहुंचे। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाती है। वहीं खाड़ी देशों में आज पवित्र माह रमजान का 2रा रोजा है। बांग्लादेश में रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान नमाज, रोजा, दान और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में इस दौरान नए कार्यालय समय लागू हो गए हैं। इसराइल रमजान के दौरान गजा में अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने आज सुबह एक बयान में कहा कि वे अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ के युद्ध विराम विस्तार प्रस्ताव को लागू करने पर सहमत हो गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पहले चरण के युद्ध विराम की सीमा समाप्त होने के करीब है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि अगर हमास सहमत हुआ तो इसराइल विटकॉफ की योजना पर तुरंत बातचीत करेगा। बयान में ये भी कहा गया है कि गजा में आधे से अधिक बंधकों को अस्थायी संघर्ष विराम के पहले दिन रिहा किया जाएगा। बाकी बंधकों की रिहाई स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भेंट की। बैठक में ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऋण यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। ये बैठक अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव के एक दिन बाद आई है। चर्चा में प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के अटूट समर्थन का वायदा किया। उन्होंने यूक्रेन में स्थायी शांति प्राप्त करने की दिशा में काम करने के ब्रिटेन का संकल्प व्यक्त किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने समर्थन के लिए ब्रिटेन का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज किंग चार्ल्स तृतीय और यूरोपीय सहयोगियों के समूह से मुलाकात करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य नेता भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE के समाचार पत्रों ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ मेला की सराहना की है। गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, गल्फ टुडे और द नेशनल जैसे समाचार पत्रों ने इस आयोजन की सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक महत्व और तकनीकी प्रगति पर विशेष ध्यान दिया और कहा कि इसी वजह ये सुचारू संपन्न हो गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। इस मैच की विजेता मंगलवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। हारने वाली टीम का बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा। इस बीच कल रात कराची में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया। वहीं महिला प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में कल रात बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली ने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने 148 रन का लक्ष्य केवल 15 ओवर और 3 गेंद में हासिल कर लिया। शिफाली वर्मा ने 80 और जोनासेन ने 61 रन बनाए। शिफाली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में भारत के यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने कल रात फाइनल में फिनलैंड के हैरी होलियोवारा और ब्रिटेन के हेनरी पेटन की जोड़ी को 3-6, 7-6, 10-8 से पराजित किया। वहीं यूकी के करियर का ये 4था ATP डबल्स खिताब है। इससे पहले यूकी और एलेक्सी ने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के जेमी मरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह पक्की बनाई थी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल कोच्ची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जमशेदपुर FC और केरल ब्लास्टर्स FC के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। ईस्ट बंगाल आज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में बेंगलुरु FC के साथ खेलेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग के अनुसार कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूरे दिन गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और आर्द्र स्थिति बनी रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
धन्यवाद फरहत। यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच तीखी तकरार की खबर आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, ट्रंप के साथ तीखी तकरार के बाद जेलेंस्की खनिज समझौते को तैयार, व्हाइट हाउस में फजीहत के बाद नरम पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति। वहीं अमर उजाला ने उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बर्फ में दबे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब होने की खबर को सुर्खी बनाया है, अब सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाएंगे सैलानी। चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में 3 मार्च तक हिमस्खलन की संभावना। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को 31 मार्च के बाद ईंधन मिलना बंद, दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जनसत्ता ने खरीदारी शीर्षक से रमजान का महीना शुरू होने की खबर सचित्र दी है। महिला सम्मान योजना की शुरुआत इसी माह संभव, महिला दिवस पर होगा ऐलान, हर माह 2,500 रूपये मिलेंगे, हिन्दुस्तान की खबर है।
धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर जामनगर पहुंचे। श्री मोदी आज श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह फरवरी में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 9.1% से बढ़कर 1,84,000 करोड़ रूपए हुआ। देश भर में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। और खेलों में दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।